नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार थमा, 20 नवंबर को होगा मतदान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया का युवाओं से आह्वान, मेरा भारत मंच पर आएं और प्रतियोगिता में भाग लेकर विकसित भारत में योगदान दें। केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने आकांक्षी हरिद्वार जिले में संचालित केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बच्चों तक मानकों की जानकारी पहुंचाने में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। और प्रदेश में चारधाम यात्रा का शीतकाल के लिए हुआ समापन, इस साल 46,06,275 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए। समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह, और अब समाचार विस्तार से। रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उत्तराखंड क्रांति दल, कांग्रेस, भाजपा समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुप्तकाशी में पार्टी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में आयोजित बाइक रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि केदारनाथ विधानसभा में भाजपा बड़ी जीत दर्ज करेगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदाल ने मतदाताओं से संपर्क कर मतदान की अपील की। इस बीच चुनाव आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज 7 पोलिंग पार्टियां दूरस्थ क्षेत्रों के लिए रवाना की गईं, जबकि कल 166 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। पोलिंग पार्टियों को रवाना करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौरभ गहरवार ने कहा कि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान प्रशासन की प्राथमिकता है, इसके लिए सभी को पूरी निष्ठा से काम करना होगा। वहीं सामान्य चुनाव प्रेक्षक विनोद सेसन ने चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट से हो रहे मतदान का जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर लगे सभी कार्मिकों का मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विनय बागुना, आकाशवाणी समाचार, रुद्रप्रयाग।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 अगले वर्ष 11 और 12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेताओं के संवाद के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह मंच देश की युवा शक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष बातचीत करने और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। डॉ. मंडाविया ने देश के युवाओं से 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 तक माई भारत मंच पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया।
25 नवंबर 2024 टू 5 दिसंबर 2020 यानी कि 10 दिन के लिए देश के यूथ माय भारत प्लेटफॉर्म पर आए और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और विकसित भारत के लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन दे, या तो विकसित भारत के लिए जो कंपटीशन हुई है उसमें पार्टिसिपेट करके वो नेशनल लेवल की कंपटीशन में भी आए और प्रधानमंत्री जी के सामने अपना विषय या तो अपना विचार को साझा करे।
श्री मंडाविया ने कहा कि इस संवाद का उद्देश्य देश भर के युवाओं में प्रतिभा की पहचान करना और उन्हें विकसित करना है, साथ ही उन्हें विकसित भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह मंच युवाओं को शीर्ष निर्णय निर्माताओं और प्रतिष्ठित वैश्विक और राष्ट्रीय हस्तियों से जोड़ेगा। श्री मंडाविया ने कहा कि यह संवाद देश के युवाओं को विकसित भारत के वाहक बनने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने आकांक्षी जिले के तहत चयनित हरिद्वार जिले में संचालित केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। आज हरिद्वार में आयोजित बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री ने नीति आयोग के तहत चल रही योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और आवश्यक सुझाव दिए।
आकांक्षी जिला यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये आरंभ किया था 2018 में जनवरी में परमादरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत का 112 ऐसे जिले हैं जो कॉम्पिटिटिवली अंडर डेवलप्ड है, सो ये अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान था।
गौरतलब है कि हरिद्वार जिला देश के 112 आकांक्षी जिलों में से एक है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बच्चों तक मानकों की जानकारी पहुंचाने में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। हरिद्वार में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से आयोजित मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना कार्यशाला में श्री कौशिक ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से शिक्षक स्कूलों में बच्चों तक मानकों की जानकारी पहुंचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो के पास विभिन्न वस्तुओं को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी है। यह महत्वपूर्ण कार्य है और इससे देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
मानक ब्यूरो है है निश्चित रूप से एक अच्छी संस्था है जो हमारे जीवन में उपयोग होने वाली प्रत्येक चीज के लिए एक मानक निर्धारित करती है। आज जीवन में इस चीज का अभाव है और इस अभाव को कैसे पूरा करें, निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहूँगा तिवारी जी को, चौधरी हमारे, जिन्होंने सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया भारत सरकार।
उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शीतकाल के लिए समाप्त हो गई है। इस साल 46,06,275 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए। सर्वाधिक 16,52,076 यात्रियों ने केदारनाथ और 14,24,171 ने बद्रीनाथ की यात्रा की। वहीं उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में 7,14,755 श्रद्धालु और गंगोत्री धाम में 8,15,273 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। इस बीच सेना के बैंड के भक्तिमय धुनों और बद्री विशाल के उद्घोष के साथ ही श्री उद्धव जी, श्री कुबेर जी तथा आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी बद्रीनाथ से योग बद्री पांडुकेश्वर मंदिर पहुंच गई है। आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी और रावल धर्माधिकारी वेद पाठी कल नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ पहुंचेंगे। इसके साथ ही योग बद्री पांडुकेश्वर और श्री नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ में शीतकालीन पूजाएं भी शुरू हो जाएंगी। रुद्रप्रयाग के राजस्व ग्राम तरवाड़ी में पंचांग पूजन और धार्मिक परंपराओं के साथ पांडव नृत्य का आयोजन शुरू हो गया है। पांडव पश्व अस्त्र शस्त्रों के साथ नृत्य कर रहे हैं और पांडव नृत्य को देखने दूर दराज से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तरवाड़ी गांव में 20 दिवसीय इस अनुष्ठान में पारंपरिक जागर गीतों के साथ पांडवों का आह्वान किया जाता है। ग्रामीण किशन सिंह रावत का कहना है कि जागरों में महाभारत काल की घटनाओं को पांडवानी अंदाज में ढोल की थाप के साथ गाया जाता है। उन्होंने बताया कि पांडव नृत्य की ये परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है और इसे जीवंत रखने की के लिए ये आयोजन किया जाता है।
चली आ रही परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है और जिसे आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देव एकादशी से ऐसे पांडव लीला की शुरुआत हो जाती है और उत्तराखंड की अनोखी परंपरा है जिसके अंतर्गत पूर्वजों से चली आ रही इस परंपरा का हम निर्माण कर रहे हैं।
प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन कर ऋषिकेश नगर निगम ने अन्य नगर निकायों के लिए मिसाल कायम की है। नगर निगम न सिर्फ प्लास्टिक कचरे को सफलतापूर्वक एकत्र कर रहा है बल्कि उसे रिसाइकल कर फिर कहीं तरह से उपयोग में ला रहा है। ऋषिकेश तीर्थ नगरी होने के साथ ही राफ्टिंग और कैंपिंग का प्रमुख केंद्र है, इसलिए यहां साल भर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। नगर आयुक्त शैलेन्द्र सिंह नेगी की पहल पर ऋषिकेश नगर निगम ने सबसे पहले ISBT त्रिवेणी घाट और वीरभद्र में प्लास्टिक बैंक स्थापित किए। प्लास्टिक बैंक के लिए बॉक्स बनाने में पुरानी प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल किया गया जिसमें लोग खुद ही खाली बोतलें या अन्य प्लास्टिक कचरा डालते हैं। अब तक इन प्लास्टिक बैंकों से करीब 400 किलो प्लास्टिक रिसाइकल किया जा चुका है। नगर आयुक्त ने बताया कि ऋषिकेश नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे से वेस्ट टू वंडर पार्क भी तैयार किया है जिससे पुराने टायर, खराब स्ट्रीट लाइट, साइकिल और स्कूटर जैसी वस्तुओं से बच्चों के झूले और सजावटी सामान बनाए गए हैं। महिला समूह भी कूड़ा निस्तारण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने कूड़ा उठान कार्य कर रही दो निजी कंपनियों से कार्य वापस ले लिया है। इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम ने 47 वार्डों से डोर टू डोर कूड़ा उठान के लिए निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं। शेष 26 वार्डों से भी डोर टू डोर कूड़ा उठान के लिए जल्द निविदा आमंत्रित की जाएंगी। गौरतलब है कि शिकायतों के आधार पर जिलाधिकारी ने पहले भी निजी कंपनियों को चेतावनी जारी करने के साथ ही अर्थदंड का जुर्माना भी लगाया था। संस्कृत भाषा के प्रचार और संवर्धन के लिए 22 नवंबर को प्रदेश के सभी 95 विकास खंडों में संस्कृत प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के सचिव डॉ बाजश्रवा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण 23 नवंबर को किया जाएगा। आयुष्मान व वंदना कार्ड ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह कार्ड बुजुर्ग नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवा लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अक्टूबर को लॉन्च किए जाने के 3 सप्ताह के भीतर हासिल की गई। अब तक इस योजना के तहत 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 4,800 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभ हुआ है, जिनमें 1,400 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार थमा, 20 नवंबर को होगा मतदान। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया का युवाओं से आह्वान, मेरा भारत मंच पर आएं और प्रतियोगिता में भाग लेकर विकसित भारत में योगदान दें। केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने आकांक्षी हरिद्वार जिले में संचालित केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बच्चों तक मानकों की जानकारी पहुंचाने में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। और प्रदेश में चारधाम यात्रा का शीतकाल के लिए हुआ समापन, इस साल 46,06,275 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।